आज है 10 जून दिन सोमवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। क्रिकेट विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रोका, 36 रन से हराया।
हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारी टीम में ऐसे दो एक सॉलिड ओपनर हैं जो अगर अच्छा खेलते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है पूरे ड्रेसिंग रूम को।
जम्मू के कठुआ जिले में बकरवाल समुदाय की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में पठानकोट की अदालत आज सुना सकती है फैसला।
दिल दुखता है, वही बच्ची सताती है हमको, बेकसूर मारी हमारी बच्ची, हमको इंसाफ होना चाहिए।
बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने कहा विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे।
पिछले एक हफ्ते में जितना कुछ संकेत मिला है बीजेपी को जेडीयू की तरफ से, उससे तो साफ जाहिर है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है इस गठबंधन।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। भारत ने वर्ल्ड कप क्रिकेट में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हरा दिया है। लंदन के ओवल मैदान पर भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 352 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 316 रन पर आउट हो गई। भारत की टूर्नामेंट में यह लगातार दूसरी जीत है और उसने अपने पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को मात दी थी। भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले ओपनर शिखर धवन को उनकी शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। धवन ने 109 गेंदों में 16 चौकों की मदद से 117 रनों की पारी खेली। हांगकांग में नए प्रत्यर्पण कानून के विरोध में कल विशाल प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में लोग चीन में प्रत्यर्पण की योजना के खिलाफ इकट्ठा हुए। इससे पहले साल 1997 में हांगकांग को चीन को सौंपे जाने के समय सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ था। आयोजकों का दावा है कि 10 लाख से अधिक लोगों ने चिलचिलाती गर्मी में मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से प्रत्यर्पण कानून की अपनी योजना को वापस लेने की मांग की है। हांगकांग के चीन समर्थक नेता एक विधेयक पर जोर दे रहे हैं जिसमें आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें चीन प्रत्यर्पित किए जाने का प्रावधान है। एक प्रदर्शनकारी एग्नेस चो ने कहा, बहुत से लोग नाराज हैं और वो इसलिए सड़कों पर उतरे क्योंकि वे हमारा घर बचाना चाहते हैं। मैं कह सकती हूं कि हम इतिहास रच रहे हैं। मेरा मानना है कि ये प्रदर्शन हांगकांग में राजनीतिक बदलाव लाएगा। ये थे प्रदर्शन में शामिल एक महिला एग्नेस चो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका की दो बड़ी कंपनियां रेथियन और यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज अपने एयरोस्पेस कारोबार का विलय करने पर सहमत हो गई हैं। रेथियन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें बनाने के लिए मशहूर है, जबकि यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज एरोनॉटिक्स उपकरण बनाने की अग्रणी कंपनी है। विलय के बाद नई कंपनी का कारोबार $100 अरब से अधिक हो जाएगा। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा है कि उनका देश दूसरे अन्य देशों के साथ ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बातचीत जरूरी है क्योंकि हालात हमेशा ऐसे नहीं रह सकते जैसे कि अभी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वे ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिकी प्रतिबंध जारी रहने तक बातचीत संभव नहीं है। संकट का समाधान निकालने की कोशिशों के तहत जर्मनी के विदेश मंत्री और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे इसी हफ्ते तेहरान का दौरा करेंगे। सूडान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल डॉक्टरों का कहना है कि राजधानी खार्तूम में नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है। डॉक्टरों की समिति ने इसके लिए सत्तारूढ़ सैन्य परिषद और सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया है। कामकाजी हफ्ते के पहले दिन खार्तूम में कई दफ्तर बंद रहे। प्रदर्शनकारी सूडान में नागरिक सत्ता की मांग कर रहे हैं। सूडान डॉक्टर्स यूनियन की अध्यक्ष डॉक्टर सारा अब्देल गलील ने कहा कि खार्तूम और दूसरे कई शहरों में नागरिकों पर हमले हुए हैं, साथ ही कई समुदायों के नेताओं की चुनकर हत्याएं हुई हैं। स्पेन के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम को हराकर रिकॉर्ड 12वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 4 सेटों में 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 से जीत हासिल की। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी, अपने मोबाइल फोन पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। क्रिकेट विश्व कप के ओवल में खेले गए एक अहम मुकाबले में भारत ने पिछले चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हरा दिया। शानदार शतक जड़ने वाले शिखर धवन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। क्रिकेट विश्व कप में भारत की ये लगातार दूसरी जीत है। ज्यादा ब्यौरा आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट में।
हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारी टीम में ऐसे दो एक सॉलिड ओपनर हैं जो अगर अच्छा खेलते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है पूरे ड्रेसिंग रूम को।
ये कहना है भारत के कप्तान विराट कोहली का, जो रोहित शर्मा और शिखर धवन की बात कर रहे हैं, जिनके शानदार खेल के दम पर 12वें ICC विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल भारत ने एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में पिछली चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 53 रनों जैसा बड़ा लक्ष्य था, जिसका पीछा करते हुए उसकी पूरी पारी पूरे 50 ओवर में 316 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने 84 गेंदों पर 56 और कप्तान आरोन फिंच ने 35 गेंदों पर 36 रन बनाए। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े, लेकिन आरोन फिंच तभी रनआउट होकर पेविलियन लौटे। आरोन फिंच के रनआउट होने के बाद स्टीव स्मिथ ने जमकर खेलते हुए 70 गेंदों पर 69 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उनके आउट होने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने राहत की सांस ली ही थी कि उस्मान ख्वाजा जम गए। उन्हें जब जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड किया तब तक वो भी 39 गेंदों पर 42 रन बना चुके थे। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी ने जमकर लोहा लेते हुए केवल 35 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 55 रन बनाए, लेकिन उन्हें बाकी खिलाड़ियों का साथ नहीं मिला। भारत के भुवनेश्वर कुमार ने 50 रन देकर 3 और जसप्रीत बुमराह ने भी 61 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। उनके अलावा स्पिनर युजवेंद्र चहल ने 62 रन देकर 2 विकेट झटके। मैच समाप्त होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि रनों का पीछा करते समय लगातार विकेट गिरना हार का कारण बना।
When you're chasing a total, a lot of things have to go right. You have to have an in batter go really deep and a few cameos around that player as well. And we just kept losing wickets at crucial times, unfortunately.
इससे पहले भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसे सही साबित करते हुए पहले तो सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 117 रनों की शतकीय पारी खेली। इस दौरान उनका साथ देते हुए रोहित शर्मा ने भी 57 रन बनाए। इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने अपनी फॉर्म हासिल करते हुए 77 गेंदों पर 82 रन बनाए। वैसे विराट कोहली ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कल शिखर धवन के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या को KL राहुल की जगह नंबर 4 पर भेजा, जिन्होंने केवल 27 गेंदों पर 48 रन बनाकर मैच का नक्शा ही बदल दिया। मैच समाप्त होने के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन की बल्लेबाजी से गदगद हो गए।
रोहित और शिखर, उनका जो ICC टूर्नामेंट्स और बड़ी टीमों के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है वो आउटस्टैंडिंग है, और एक रीजन है कि आप अगर 2013 से अब तक देखें तो एक ही ओपनिंग पेयर चल रहा है। ये बहुत रेयर होता है वनडे क्रिकेट में स्पेशली कि 6 साल तक एक ओपनिंग पेयर डोमिनेट करे इंटरनेशनल क्रिकेट में। आउटस्टैंडिंग, आई मीन दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर है।
अब भारत का अगला मुकाबला गुरुवार को न्यूजीलैंड से है, जिसने अपने पिछले 3 मैच जीते हैं। दूसरी तरफ ये भारत की लगातार दूसरी जीत रही।
रिपोर्ट सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम में आगे साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी भी होगा। जम्मू के कठुआ जिले में बकरवाल समुदाय की 8 साल की बच्ची के साथ पिछले साल सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में पठानकोट की अदालत आज फैसला सुना सकती है। इस मामले की वजह से जम्मू कश्मीर में BJP के 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था और संयुक्त राष्ट्र में भी इस मामले की गूंज सुनाई पड़ी थी। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
क्यों मारा वो बेगुनाह, बेकसूर मारा हमारी बच्ची, उसका क्या जुल्म किया उसने, जुल्म उनका।
अपनी बेटी की जुदाई में निढाल ये थी पीड़िता की माँ। बेटी के साथ घटी घटना के 1 साल बाद भी वो उस जगह पर ठहराव नहीं करते हैं जहां उनकी बेटी उनके साथ हुआ करती थी। अब अगर माँ को किसी बात का इंतजार है तो वो बेटी को इंसाफ मिलने का।
दिल दुखता है, वही बच्ची सताती है हमको, दिल हमारा बहुत दुखिया हो गया है। और भी हमारा एक बहन गया, हमको इतना दुख नहीं लगा जितना उस बच्ची का हमको दुख लगा है। बेकसूर मारी हमारी बच्ची, हमको ये हम चाहता हूँ बस इंसाफ, हमको इंसाफ होना चाहिए अपनी बच्ची का।
उनका यह भी कहना था कि उस घटना के बाद वो परिवार की दूसरी लड़कियों को कहीं भी अकेले जाने नहीं देते।
डरते रहते रे, रात को भी डरते, दिन को भी डरते, क्या पता और क्या बनेगा। हमको बहुत डर लग रही है। पहले तो हम खुले जाते थे, बच्चे हमारे जाते थे उधर उधर, खुले जाते खुले आते थे जाते थे, और हमको बहुत डर लगे। जो बच्चा भेजते पशु के पास उसके साथ जाते, फिर उसको वापस साथ लाते, हमको बहुत डर लगी। ऊपर जाते उधर भी डर लगती, नीचे हम उधर जाते रसाने उधर भी हमको बहुत डर लगती है।
पीड़िता की बहन अपनी बहन के हथियारों के लिए फांसी की मांग कर रही है।
बहुत बहुत बेरहमी हुई उसके साथ। हम ले जाते हैं आसिफा को, आसिफा के कातिलों को फांसी होनी चाहिए। जो साल होने लगा है या अभी फैसला होगा, फिर जो जो फैसला होने वाला है उसको इंतजाम में है हम कि आसिफा के मुजरिमों को फांसी होनी चाहिए।
बहन का ये भी कहना था कि जब भी बहन के कपड़े या उसके खिलौने देखते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है।
हम जो जगह देखते हैं उसकी, और उसके खिलौने देखते हैं, और उसके कपड़े देखते हैं, उसके सब कुछ देखते हैं, याद आ रही है। क्यों यहाँ वहाँ पे जम्मू भी जाते हैं, याद आ रही है।
गौरतलब है कि बीते साल जनवरी में कठुआ के रसाना इलाके में मुस्लिम बकरवाल समुदाय की 8 वर्षीय मासूम का पहले अपहरण हुआ था, फिर सामूहिक बलात्कार और फिर हत्या। पुलिस ने अपने आरोप पत्र में बताया था कि पीड़िता को नशीली दवाइयां खिलाई गई थी और फिर मंदिर में बंधक बनाया गया था। इस घटना के खिलाफ राज्य में और भारत के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान कठुआ में हिंदू एकता मंच नामी संगठन ने अभियुक्तों के समर्थन में प्रदर्शन रैली निकाली थी और रैली के दौरान तिरंगा लहराया था। उस प्रदर्शन रैली में बीजेपी के 2 मंत्री भी शामिल हो गए थे, जिन्हें बाद में अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा था। बीते साल अप्रैल में पुलिस ने कठुआ में जब चार्जशीट दाखिल की थी तो कठुआ के स्थानीय वकीलों ने पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में केस को कठुआ से पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट शिफ्ट किया था, जहां केस का ट्रायल चला। पीड़िता के पिता ने BBC को बताया कि उन्हें अदालत पर पूरा विश्वास है। उनका यह भी कहना था कि जब भी बेटी की तस्वीर कोई दिखाता है तो उनका कलेजा फटने को आता है।
हमको ऐसे कोर्ट का विश्वास है, जो कोर्ट हमारे कर रहे हैं, जो अदालत कर रही है, उसको फोटो को दिखाते हैं, मुझे कलेजा फट जाता है। क्या करें सर, मुझे बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म से।
इस मामले में एक नाबालिग समेत 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस ने दावा किया था कि इस पूरी साजिश को सांझी राम ने रचा था। हालांकि अभियुक्त सांझी राम ने अदालत में बताया था कि उनके खिलाफ एक साजिश रची गई है और अदालत से मांग की थी कि उनका नार्को टेस्ट किया जाए। अभियुक्तों ने इस मामले में CBI से जाँच की मांग की थी, जिस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार किया था। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच खाई गहरी होती नजर आ रही है। जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि पार्टी आने वाला विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। दोनों दलों के बीच बढ़ती इस दूरी के क्या मायने हैं, समझने के लिए हमारे सहयोगी संदीप राय ने पटना में वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर से बात की।
पिछले एक हफ्ते में जितना कुछ संकेत मिला है बीजेपी को JDU की तरफ से, उससे तो साफ जाहिर है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है इस गठबंधन में। और आपने जैसा कहा कि वो सिलसिला जो शुरू हुआ दिल्ली से, और अभी कार्यकारिणी की जो बैठक थी JDU की, उसमें उसके बाद जो बयान आए हैं, और बीच में जो प्रशांत किशोर का एक प्रकरण आया है कि किस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के साथ अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो एक उनके लिए रणनीति बनाने के लिए इन्होंने बाजाबता इनकी कंपनी ने जो भी है प्रशांत किशोर की, उन्होंने उनसे जो भी एग्रीमेंट किया है, तो ये सब क्या दिखाता है? ये कोई छिपाने वाली बात अब दिख नहीं रही है।
लोकसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिन्हें बिहार एक बड़ा राज्य है। क्या ये पोस्टरिंग आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के है?
बिल्कुल, ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये बल्कि ये तैयारी हो रही है कि अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड का किस तरह का रिश्ता हो। वो नीतीश कुमार जो अपना इस प्रदेश में वर्चस्व चाहते हैं, चाहते रहे हैं, बल्कि पिछले चुनाव में भी या जब भी बिहार की राजनीति में लोगों ने साफ देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले नीतीश कुमार अपनी पार्टी को और खुद को भी ऊपर दिखाना चाहते रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है वो आगामी विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नहीं हो रहा है।
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अगले पश्चिम, जैसा कि आपने बताया, पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता के लिए काम करने जा रहे हैं, ऐसा घोषणा की है, लेकिन नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं।
सिर्फ चुप्पी साधे नहीं है, बल्कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है कल और आज इस सिलसिले में, उससे तो साफ जाहिर होता है कि वो कह तो रहे हैं कि मामला कुछ भी नहीं है, वो उनकी कंपनी है, वो जो काम कर रहे हैं उससे पार्टी को, जेडीयू को कोई मतलब नहीं है। और जेडीयू के जो उपाध्यक्ष हैं और उस शांत किशोर अपनी कंपनी के सर्वे सर्वा हैं, और वो कुछ ऐसा दूसरे प्रांत में जाकर करते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला अब तृणमूल कांग्रेस से होने जा रहा है, और वहां जनता दल यूनाइटेड का उपाध्यक्ष जाके उनको, उनके लिए रणनीति बनाए और उनको चुनाव में जिताने की तमाम कोशिशें करें, तो ये कैसे, मैंने ये अंतर विरोध, ये कोई छिपाने वाली बात अब रही नहीं। और इसमें कहें वो जो भी नीतीश जी, बल्कि उन्होंने बचा बचा के कहा, उन्होंने ये कहा क्या कि ये प्रशांत किशोर ही ठीक से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि उन्होंने क्या सोच कर किया है। लेकिन जब वो आए आज कार्यकारिणी की बैठक में, ठीक नीतीश कुमार की बगल में बैठे, और जिस तरह से हंस हंस के बातें हो रही थी, और इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं उठी या मीडिया से को बताया नहीं गया इस बाबत कुछ भी, तो इससे क्या लगता है? इससे तो यही लगता है कि वो पूरे तौर पर इसी तैयारी में है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और उनके दल का जो वर्चस्व है वो कबूल करके और पीछे पीछे चले, आगे आगे वो चलेंगे।
जेडीयू के प्रवक्ता के सी त्यागी का बयान भी आया है कि उनकी पार्टी 370 पर कोई समझौता नहीं करेगी। जेडीयू की ओर से इस वक्त ये बयान आया है, क्या इसका भी वही संकेत समझा जाए?
संकेत बिल्कुल वही है, लेकिन इसमें एक बात सामने आ जाती है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी क्यों खामोश है? नीतीश कुमार इतने लगातार संकेत दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ भी क्यों नहीं सामने आ रहा है कि वो एतराज जाहिर करें या इस पर उनकी कोई आपत्ति हो? ऐसा तो हो नहीं रहा है।
क्या बीजेपी या एनडीए के खेमे में इन संकेतों को लेकर कोई हलचल है, या इन्हें वो कैसे ले रहे हैं?
अंदर अंदर हलचल है और बाहर से हलचल नहीं है ये दिखाने की नाकाम कोशिश हो रही है, लोग तो समझ ही रहे हैं।
बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के संबंधों का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर। और आइए एक नज़र दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियों पर। दिनेश उप्रेती तैयार हैं तमाम अखबारों के साथ।
जी संदीप जी, वर्ल्ड कप में भारत की ऑस्ट्रेलिया पर जीत की खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पों के बाद आरोप प्रत्यारोप की खबरें भी कई अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ताज़ा हिंसा पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार फिर आमने सामने आ गई हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य में कानून व्यवस्था फेल होने का आरोप लगाया है, तृणमूल कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर राज्य सरकार से तत्काल कदम उठाने को कहा है। उधर राज्य सरकार ने इस एडवाइजरी को असंवैधानिक बताते हुए बंगाल की जनता का अपमान बताया है। दरअसल उत्तरी 24 परगना जिले के बसीरहाट में हुई हिंसा में बीजेपी के दो और टीएमसी के एक कार्यकर्ता की मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। क्षेत्र में इंटरनेट और केबल सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक और खबर है कि जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका दौरे की तस्वीर को पहले पन्ने पर छापा है। मोदी ने कोलंबो में सेंट एंथनी चर्च का दौरा किया, ये वही चर्च है जिसे ईस्टर संडे के दौरान हमलावरों ने अपना निशाना बनाया था। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने श्रीलंका के राष्ट्रपति सचिवालय में मैत्रीपाला सिरिसेना और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ खबर प्रकाशित की है। अलीगढ़ में एक बच्ची के साथ दरिंदगी के खिलाफ प्रदर्शन और आगजनी की खबरें भी कई अखबारों में हैं। अखबारों के मुताबिक अलीगढ़ में धारा 144 के बावजूद दिन भर प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया, पीड़ित परिवार के घर के 200 मीटर के दायरे में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दैनिक भास्कर के मुताबिक श्रीनगर के पास 17 फरवरी को भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की जांच आखिरी दौर में पहुंच गई है। अखबार के मुताबिक इस मामले में गंभीर लापरवाही के लिए दो अफसरों का कोर्ट मार्शल हो सकता है।
दिनेश उप्रेती बता रहे थे दिल्ली से छपने वाले अखबारों की खास खास सुर्खियां। और अब पाकिस्तान से वस्तुल्ला खान की साप्ताहिक डायरी आ पहुंची है। पाकिस्तान में कल अगले वर्ष के लिए बजट पेश किया जाएगा। पाकिस्तान में इस बजट पर क्या आम क्या खास, सबकी नज़रें लगी हुई हैं। देश की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, जिसे बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। कराची से वरिष्ठ पत्रकार वस्तुल्ला खान की डायरी।
आज से शुरू होने वाला हफ्ता बहुत तूफानी है। कल यानी मंगलवार को अगले आर्थिक वर्ष का बजट पेश होने वाला है। सबों का यहाँ खून खुश्क हो रहा है ये सोच सोच के कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज पे 6 अरब डॉलर मिलने से पहले पहले देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक संतुलन लाने के नाम पे कौन कौन से नए टैक्स बेलन जनता की कमर पे चलाने का प्रयास होने वाला है। सेना ने भी ऐलान कर दिया है कि उसे नए बजट में कोई नया पैसा नहीं चाहिए। जितना पैसा अब मिल रहा है उतना ही अगले वर्ष के लिए भी काफ़ी होगा, यानी 1001 करोड़ रुपए। परंतु जब सेना ने कमर बांध ली है तो व्यापारी, उद्योगपति, पूंजीपति और करोड़ों धोती और बनियान पतियों की क्या मजाल के नए टैक्सों पे मुंह से सी की आवाज़ भी निकाल सकें। इसलिए आगामी बजट के इंतज़ार में हम सब दम साधे सीट बेल्ट बांधे बैठे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मौसम की खराबी के कारण आर्थिक उड़ान कम से कम अगले 2 वर्ष के लिए बहुत ही झटकेदार होने वाली है। हो सके तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और मंगलवार के बाद आएंगे गुरुवार और शुक्रवार, जब किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शिखर बैठक में नरेंद्र मोदी और इमरान खान भी भाग लेंगे। अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि मोदी जी का विमान एक विशेष अनुमति पत्र के साथ बिश्केक आते जाते पाकिस्तान के ऊपर से गुजरेगा। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि दोनों नाराज़ नहीं, दोनों एक ही हॉल में बैठेंगे और ग्रुप फोटो में भी होंगे, पर एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। दोनों बाकी सब नेताओं से मिलेंगे पर एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। दोनों नेताओं का ये बचपना बाकी नेता बहुत दिलचस्पी से देख के इंजॉय करेंगे। मगर ऐसा तो पहले भी हो चुका है, नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर एक दूसरे के सामने से गुजरते हुए अचानक हाथ मिला लिया, मीडिया ने बगलें बजाई, टिप्पणी बाजों ने बादल देख के घड़े फोड़े और नतीजा वही ढाक के 3 पात। ना मिलने से कोई लाभ, ना मिलने से किसी के बाप का नुकसान। और फिर आ जाएगा रविवार, जब विश्व क्रिकेट कप में भारत और पाकिस्तान ना चाहते हुए भी ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। 50 ओवर्स का युद्ध पड़ेगा, यहाँ से वहाँ तक लगभग 150 करोड़ जनता होगी पागल, और जो ना जीता उसकी शामत। और फिर ये हफ्ता भी गुजर जाएगा एक ऐसे नए हफ्ते के इंतज़ार में जो भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरने वाले हज़ारों हफ्तों से रत्ती बराबर भी मुख्तलिफ ना हो। फिर वही वाघा अटारी सीमा गेट पे हवा को चीरती और धरती को हिलाती सैनिकों की एड़ियाँ और हमारी गालियाँ और जय हिंद और पाकिस्तान जिंदाबाद।
वस्तुल्ला खान की डायरी के बाद वक्त हो चला है साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी का।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। लॉर्ड्स को अगर क्रिकेट का मक्का कहा जाता है तो विंबलडन को टेनिस का सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, लेकिन रोला गैरा की लाल बजरी पर होने वाले फ्रेंच ओपन पर तो जैसे स्पेन के राफेल नडाल का ही नाम लिखा है। भविष्य में क्या होगा ये वक्त ही जाने, लेकिन कल उन्होंने पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। दूसरी वरीयता हासिल नडाल ने फाइनल में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 से मात दी। ये नडाल का लगातार 3रा और कुल मिलाकर 12वां फ्रेंच ओपन खिताब है। और अब समीक्षा।
इंडिया हैव कॉज्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपसेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल स्पोर्ट।
Finishes off in style. A magnificent magnificent strike into the crowd. India left the World Cup after 28 years.
क्या महेंद्र सिंह धोनी आजकल दूसरे कारणों से चर्चा में हैं और विश्व कप में ये क्या हो रहा है? गिल्लियों और विकेट का जोड़ ऐसा जो तेज गेंद से भी न टूटे और अंपायरिंग का स्तर भी विश्व स्तरीय नहीं।
वर्ल्ड क्रिकेट के इतने महानतम खिलाड़ियों में हमेशा उनका नाम रहेगा, पर इस मामले में मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ जो उन्होंने ग्लव पे लोगो लगाया। अगर अपनी बात पे ठीक थे धोनी या भारतीय टीम तो मुझे नहीं लगता उनको दूसरे दस्तानों से खेलने की जरूरत पड़ती। और अगर आपको याद हो आईपीएल में अच्छे मैदान में उतर गए थे धोनी, जो बिल्कुल धोनी की तरह हरकत नहीं थी, वो छोटे खिलाड़ियों के लिए आपने बहुत ही खराब एग्जाम्पल रखा। फील्ड में उतर आए अंपायर से बहस करने के लिए और यहाँ क्या दिखाना चाहा आपने? जहाँ तक देशभक्ति की बात है, मैं नहीं मानता कि आप लोगों पहनने से ही आप देशभक्त होते हैं। जब आप भारत की जर्सी पहनते हैं तो आप देशभक्त ही होते हैं, उस वक्त भी गलत बातों के लिए हेडलाइंस उन्होंने कमाई है।
ये मानना है क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली का। और इंग्लैंड में जारी विश्व कप में भारत के विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रेजिमेंटल डैगर के निशान वाले दस्ताने पहनकर मैदान में उतरने की हरकत ने पहले तो आईसीसी और उसके बाद बीसीसीआई को हिला दिया और मामला शांति से निपट गया। लेकिन मैदान में भी कुछ कम नहीं हो रहा, जहां एक एक रन और एक एक विकेट के लिए 10 टीमों के खिलाड़ी जी जान लगा रहे हों, वहां विकेट पर गड़ी स्टंप्स पर लगी गिल्लियां यानी व्हील्स गिरने को तैयार नहीं है। एक आध बार ऐसा हो तो समझ में आता है, लेकिन 5 बार और एक बार तो 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, जब कल भारत के जसप्रीत बुमराह की गेंद डेविड वार्नर के बल्ले से लगकर स्टंप से छू गई, बुमराह खुशी से उछले लेकिन गिल्लियां नहीं उछली, जमी रही। अब बाकी 4 किस्सों को छोड़िए, भारत के कप्तान विराट कोहली हैरान है और उनका साफ साफ कहना है कि कोई भी टीम ऐसा नहीं चाहती।
This is not something which you expect at the international level as a batsman. I mean, if I see something happening like that, I'd be very surprised also. I'm sure no team would like seeing stuff like that, you know, when you actually bowl a good ball and then you don't get the guy out, the ball hits the stump and the lights don't come on, or the lights come on and the bail comes back onto the stump. I mean, I haven't seen that happen so many times in the past.
अब जरा सोचिए कि यही विराट कोहली तब क्या कहते जब कहीं डेविड वार्नर इसका फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया को जिताने वाली पारी खेल जाते। इतना ही नहीं, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच तो अंपायर की अंगुली रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो भी 3-3 बार गलत निर्णय देने के लिए। भला हो रिव्यू का जो सुधार हो गया। विजय लोकपल्ली कहते हैं,
कई बार ऐसा होता है कि अंपायर का दिन खराब होता है और नो बॉल चूके LBW के खराब निर्णय दिए, तो हमको इस चीज को नजरअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि एक मैच हो गया, अंपायर भी इंसान होता है, वो भी गलती कर सकता है। उस दिन हाँ मैं आपसे सहमत हूँ, बहुत खराब अंपायरिंग रही, पर वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप देखें इतने सारे मैचेस हो रहे हैं, हमेशा अंपायर स्क्रूटिनी में है, इतने कैमरे उनको देखते हैं, कॉमेंटेटर्स उन पर डिबेट करते हैं, तो अंपायर हमेशा प्रेशर में रहता है। तो थोड़ा सा मेरी सहानुभूति है अंपायरों के साथ, बहुत कठिन काम है उनका, अगर गलती कर दे तो हमको उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए।
अभी तो विश्व कप शुरू हुए 2 सप्ताह ही हुए हैं और इसी दौरान पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुआ मैच बारिश की भेंट भी चढ़ गया और रद्द हो गया। उम्मीद है आने वाले दिनों में खिलाड़ी, अंपायर और गिल्लियां चर्चा में कम सुनाई देंगे और क्रिकेट का रोमांच अधिक होगा। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। भारत ने वर्ल्ड कप क्रिकेट में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हरा दिया है। लंदन के ओवल मैदान पर भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 352 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 316 रन पर आउट हो गई। हांगकांग में नए प्रत्यर्पण कानून के विरोध में कल विशाल प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में लोग चीन में प्रत्यर्पण की योजना के खिलाफ इकट्ठा हुए। अमेरिका की 2 बड़ी कंपनियां रेथियन और यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज अपने एरोस्पेस कारोबार का विलय करने पर सहमत हो गई हैं। विलय के बाद नई कंपनी का कारोबार $100 अरब से अधिक हो जाएगा। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा है कि उनका देश दूसरे अन्य देशों के साथ ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समयानुसार हर दिन की तरह शाम 7:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए BBC हिंदी .com हमेशा आपके साथ है। नमस्कार।